पिछले एकादशी को हम शिला रामानुजाचार्य इनके पहले जो श्री संप्रदाय के आचार्य हुए उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चर्चा ये हुई थी कि चार वैष्णव संप्रदाय हैं और इन चार वैष्णव संप्रदायों के माध्यम से हम वैकुंठ जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। उनमें से एक है श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी से आता है और इनमें से इनके प्रमुख आचार्य श्री रामानुजाचार्य हैं। लेकिन रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के पहले आचार्य नहीं थे, इनके पहले भी कई महान आचार्य हो चुके, खास करके जो आलवार थे, आलवार नाम के जो संत थे जो रामानुजाचार्य के कई साल पहले अलग अलग समय पर प्रकट हुए दक्षिण भारत में, इनका उल्लेख श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में भी आता है। और इन आलवारों के बाद 8 आलवारों के बाद ही श्री नाथ मुनि आए। नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि युव अवस्था में ही गुजर गए और उनका छोटा एक लड़का था जिसका नाम यामुना रखा था, जबकि नाथ मुनि और ईश्वर मुनि कुटुंब सहित तीर्थ यात्रा में गए थे, वृंदावन भी गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है यमुना देवी, तो इसके बाद उनका नाम रखा गया यामुना। फिर हमने यमुनाचार्य के बारे में चर्चा किया कि किस तरह से वो बड़े बुद्धिमान थे, भाष्याचार्य के गुरुकुल में उन्होंने वो भर्ती हुए और फिर पांड्य राजा उनके दरबार में जो एक राज पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था विद्वज्जन कोलाहल, जो बहुत घमंडी हो गया था उसके विद्या या उसके शिक्षा के शिक्षण के द्वारा, उनका घमंड उन्होंने चूर कर दिया। उस राज पंडित को विद्वज्जन कोलाहल इसलिए कहा जाता था कि विद्वान लोगों को भी कोलाहल में डाल देते थे, इतने विद्वान थे वो। ऐसा कोई विद्वान नहीं था जो उनका सामना कर सकता था। और फिर ये जो कोलाहल पंडित था ये सब जगह कर वसूल करता था सारे ब्राह्मणों से, विद्वानों से। और फिर जब वो यमुनाचार्य के गुरु के पास आए कर वसूल करने के लिए, जो कि 2 साल से वो दे नहीं पाए थे, और कोलाहल के शिष्य ने भाष्याचार्य इनकी निंदा की, तो यमुना को सहन नहीं हुआ, उन्होंने भी इनको चुनौती दी। राज दरबार में एक वाद विवाद की प्रतियोगिता हुई जिसमें कि बालक यमुना जो कि केवल 12 साल के थे उन्होंने विद्वज्जन कोलाहल पंडित को हरा दिया और फिर राजा ने आधा राज्य अपना यमुनाचार्य को दे दिया और यमुनाचार्य वहां कई साल तक राज कारोबार में मग्न रहे, राजा के इंद्र तृप्ति के जीवन में मग्न रहे। और उनके दादा नाथ मुनि के लिए बड़े दुख की बात थी कि उन्होंने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय छोड़कर अभी एक राजा के जीवन को स्वीकारा हुआ है। तो उन्होंने अपने शिष्य राम मिश्रा से कहा था कि किसी न किसी तरह से यमुना को फिर से रंगनाथ या विष्णु के चरण कमलों में लाओ। और हमें भी चर्चा किए थे कि कितने चतुराई से श्री राम मिश्रा ने यमुनाचार्य को फिर से रंगनाथ के शरण में लाए। वो कथा याद है आप सबको, सुनने लायक कथा है, सुनाने लायक कथा है। तो आप जब घर जाते हैं तो जो भी मंदिर में सुनते हो घर में सुनाना चाहिए, इस तरह से हमें भी याद रहेगा। और आज भी ऐसे थोड़ी कथाएं सुनाएंगे, ये भी घर में जाके आप याद आप सुनाइए, और उन भक्तों को जो नहीं आए हैं। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, तो भक्तों को चाहिए कि कम से कम एकादशी के दिन ज्यादा समय यहां मंदिर में बिताएं। यहां आए, शाम की कथा होती है, दिन में ज्यादा जपा होता है सबका, तो भक्तों में ये बात फैलनी चाहिए। तो खैर, यमुनाचार्य रंगनाथ के शरण में आ गए और अपना राज्य उन्होंने त्याग दिया। आधा राज्य फिर से उन्होंने पांड्य राजा को दे दिया और बाकी आधा राज्य रंगनाथ जी की सेवा के लिए उन्होंने रखा। और उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, सुंदर कविताएं भगवान के गुणगान में उन्होंने लिखे, जिनमें से स्तोत्र रत्नावली ये भी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इस तरह से यमुनाचार्य, जिनका नाम आलबंदार था, मतलब जो सबको जीत सकता है, वो प्रमुख वैष्णव आचार्य बने दक्षिण भारत में। और श्रीरंगम में श्री रंगनाथ जी की सेवा करते वहां पर वो रहे। उधर यमुनाचार्य के एक शिष्य थे, सन्यासी शिष्य, जिनका नाम था श्री शैलापूर्ण। शैलापूर्ण इनकी दो बहनें थीं, एक बड़ी बहन जिनका नाम था कांतिमती और एक छोटी बहन जिनका नाम था दीप्तिमती। तो कांतिमती का विवाह एक बहुत पुण्यवान ब्राह्मण से हुआ जिनका नाम था आसुरी केशवाचार्य, जो कि बड़े विद्वान थे और सारे ब्राह्मणों की क्रियाओं में बड़े निपुण थे, प्रवीण थे, इसलिए उनको सर्वक्रतु भी कहते थे। कई सालों तक उनको एक पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ, तो केशवाचार्य और कांतिमती बड़े दुखी थीं। फिर कई सालों तक केशवाचार्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करते रहे और खास करके वो पार्थसारथी मंदिर में गए, जो कि आज मद्रास शहर के पास में है, और वहां पर पार्थसारथी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि अगर उनकी कृपा हो तो उनका एक पुत्र हो जाए। और भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की और थोड़े महीने बाद उनका एक पुत्र हुआ, सन 1017 में। ठीक उसी समय जो श्री शैलापूर्ण की छोटी बहन थी दीप्तिमती, उनका भी एक पुत्र हुआ। तो शैलापूर्ण को जब यह पता चला तो तुरंत वहां पर गए और उन्होंने इस बालक का सौंदर्य देखा और उनको याद आ गई प्रभु रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की, तो उन्होंने बच्चे का नाम रखा रामानुज। राम अनुज, अनुज मतलब छोटा, छोटा वाला, तो रामानुज मतलब राम का छोटा भाई अर्थात लक्ष्मण। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं, छोटे भाई को अनुज कहते हैं। और फिर दूसरे बच्चे को जो कि दीप्तिमती की का बच्चा था, उसे गोविंद नाम रखा। और यही बच्चा जिसका नाम उन्होंने रामानुज रखा था, आगे चल के रामानुजाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होने वाले थे। रामानुजाचार्य, उनके अंदर सारे अच्छे लक्षण दिखाई पड़े और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल के बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा आचार्य होगा। पाठशाला में भर्ती हुए और इतने बुद्धिमान थे, उनकी स्मृति शक्ति इतनी तेज थी कि सारे वहां के आचार्य बड़े प्रभावित हुए, सोचने लगे कि ऐसा बुद्धिमान लड़का तो हमने कभी नहीं देखा है। और इतना ही नहीं, अपने स्वभाव से इतना सौम्य, नरम, और इसके स्वभाव से बालक रामानुज ने सबका हृदय जीत लिया। एक बार ऐसे हुआ कि उस स्थान में जहां की वो रहा करते थे, जिसका नाम था भूतपुरी, एक महान वैष्णव वहां से हर रोज जाया करते थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण वैसे कांचीपुरम या कांची शहर में रहा करते थे, जहां की वरदराज की सुंदर विग्रह है, बहुत बड़ा मंदिर, सुंदर मंदिर है वहां पर। और वो वहां से पूनमली नाम की जगह में जाते थे, जहां और एक मंदिर था, वहां रोज वो सेवा करने के लिए जाते थे भगवान की। और भूतपुरी गांव रास्ते में पड़ जाता था, तो कांचीपूर्ण रोज भूतपुरी से होकर जब जाते थे तो रामानुज के घर से के पास में जो सड़क था वहां से गुजर के जाते थे। ये कांचीपूर्ण वास्तव में जन्म से शूद्र जाति के थे, लेकिन बहुत बड़े महान वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के, और सभी को ये दिखाई पड़ता था कि ये महान वैष्णव हैं। हालांकि उस जमाने में ब्राह्मण लोग काफी कट्टर हुआ करते थे, लेकिन जो कट्टर ब्राह्मण भी थे वो भी मानते थे कि ये कांचीपूर्ण जो है ये भगवान विष्णु के बहुत ही महान भक्त हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। और वो भी उनको दंडवत वगैरह डालते थे, उनको नमस्कार करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो इसी तरह से एक बार जब यही कांचीपूर्ण रामानुज के घर से जा रहे थे, तो रामानुज अपने पाठशाला से वापस आ रहे थे, और जब आए और रामानुज ने उनको देखा तो तुरंत उनको दंडवत डाला और उन्होंने अपने घर में उनको स्वागत किया, उनको निमंत्रण दिया। और घर में आए तो कांचीपूर्ण बड़े प्रभावित हुए इस बालक से, दिखने में इतने सुंदर, इतने नम्र, और उनके चेहरे पे जो एक प्रकार का प्रकाश था, एक शुद्धता थी, उसको देखकर उनको बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे घर में। और जब वहां पर आए तो रामानुज से बात करने लगे। रामानुज ने कहा कि आप हमारे गुरु तुल्य हैं। तो कांचीपूर्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, वैसे मैं तो शूद्र हूं और तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम मेरे गुरुतुल्य हो, मैं कैसे तुम्हारा गुरु बन सकता हूं। तो रामानुज ने उत्तर दिया कि अगर मेरा ब्राह्मण जन्म, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये आपकी सेवा करने में अगर ये बंधन बना रहा है, तो फिर ये मेरा जन्म जो है ये अशुभ है। कोई व्यक्ति केवल एक थोड़े पैसों के धागे को अपने कंधे पे लटका के जनेऊ के रूप में अगर वो ब्राह्मण बन जाता है, तो ऐसा ब्राह्मण कोई योग्य ब्राह्मण नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वही होता है जो भगवान का परम भक्त है, इसलिए आप ही परम ब्राह्मण हैं। और जब कांचीपूर्ण ने यह सुना, आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा बच्चा, इसके मन में भगवान विष्णु और भक्ति मार्ग के प्रति इतना दृढ़ विश्वास। बड़े प्रसन्न हुए, वहां पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और रात को भी वहीं पर ठहरे और अगले दिन सुबह अपने काम से निकल पड़े। उधर रामानुजाचार्य के गुरु का नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश के पाठशाला में रोज जाकर पढ़ाई किया करते थे, बड़े विद्वान बन रहे थे धीरे धीरे से। जब 16 वर्ष की आयु हो गई रामानुज की, तो उस समय उनके पिताजी केशवाचार्य ने सोचा कि अभी रामानुज का विवाह कर देना चाहिए। उस जमाने में आप जानते हैं कि बड़े कम उम्र में लड़कों के भी और लड़कियों के भी विवाह किया जाता था। तो पास वाले गांव के एक बहुत ही सुंदर नवयुवती से विवाह हो गया रामानुज का, और एक हफ्ते भर वहां अनुष्ठान मनाए गए, विवाह का अनुष्ठान। और जगह जगह से सारे लोगों को केशवाचार्य ने प्रसाद बांटा, सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन दुर्भाग्यवश रामानुज के विवाह के ठीक एक महीने बाद केशवाचार्य का देहांत हो गया, और दोनों कांतिमती और रामानुज बड़े शोकग्रस्त हो गए, क्या किया जाए। फिर कांतिमती ने सोचा कि मैं इस शहर में भूतपुरी में नहीं रह सकती, यहां से कहीं और जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम कांचीपुरम में चले जाएं। तो पहले रामानुज गए कांचीपुरम, और वहां पर उन्होंने एक निवास स्थान अपने कुटुंब के लिए बनाया, और फिर अपनी माता और पत्नी को वहां पर बुलवा दिया और वहां पर आए। उस समय यादव प्रकाश का गुरुकुल जो कि कांचीपुरम में था वो बहुत प्रसिद्ध था। यादव प्रकाश इतने बड़े विद्वान थे कि जगह जगह से लोग अपने बच्चों को उनकी पाठशाला में भेजा करते थे, जैसे आजकल लोग कॉन्वेंट में भेजते हैं सबको जगह जगह से। तो वहां भले भगवान की शिक्षा हो या संस्कृति बराबर ठीक से हो या न हो, लेकिन लोग आजकल कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं। तो यादव प्रकाश थे बड़े विद्वान, लेकिन मायावादी थे। मायावादी मतलब भगवान के भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं करते थे, भगवान के व्यक्तित्व को नहीं स्वीकार करते थे। ये नहीं मानते थे कि भगवान एक व्यक्ति हैं और वो भी सनातन व्यक्ति हैं, और सनातन भगवान की सेवा करते रहना यही जीवन का उद्देश्य है। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान की सेवा करते करते हम भी भगवान बन जाएंगे। जो मायावादी लोग होते हैं वो इस तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं कि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और जीव और भगवान के बीच में जो संबंध होता है भक्ति का वो भी सनातन है। वो मानते हैं कि जीव भी भगवान ही है, और जब कोई साधना करके वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके तपस्या करके वैराग्य की भावना जब जागृत करता है हृदय में और जब मोक्ष प्राप्ति कर लेता है इसके फलस्वरूप, तो वो भी भगवान ही बन जाता है। वैसे भी वो पहले से ही भगवान है, परंतु माया के प्रभाव में आने से वो भूल चुका है कि वो भगवान है, और ये तपस्या करने से पुनः वो स्मृति उसे आ जाती है कि मैं भगवान ही हूं। तो इसको अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद मतलब ये समझना कि जीव और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों द्वैत नहीं है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। अद्वैत, द्वैत मतलब भिन्न दो, अद्वैत मतलब एकता। तो दोनों जीव और भगवान एक हैं, ये अद्वैतवाद है। शंकराचार्य ने इस मायावाद दर्शन को काफी फैलाया था, और रामानुज शंकराचार्य के बाद में आए थे, और यादव प्रकाश जो थे वो शंकराचार्य की परंपरा में उनके संप्रदाय में आते थे। तो हालांकि शास्त्रों के बड़े विद्वान थे लेकिन अद्वैतवाद का प्रचार करते थे। अब आचार्य ऐसे कई आचार्य टीका करते हैं कि क्या कारण है कि रामानुजाचार्य ऐसे पाठशाला में भर्ती हुए जो कि मायावादी है, जबकि वो पहले से ही भक्त थे। जब कांचीपुरम के साथ में उनका व्यवहार हुआ, हमने देखा कि वो तो उनको शुद्ध भक्ति में पूर्ण विश्वास था, तो फिर यादव प्रकाश जैसे मायावादी व्यक्ति के आश्रम में क्यों भर्ती हुए वो? ऐसे बताया जाता है एक कारण यह हो सकता है कि उनके परिवार के सदस्य कट्टर वैष्णव नहीं थे, बल्कि वो स्मार्ट थे, लेकिन वो केवल इतना चाहते थे कि उनका बच्चा बहुत सुशिक्षित हो जाए, और यादव प्रकाश बड़े मशहूर थे उस इलाके में, इसलिए वहां भेज दिया। और आचार्य समझाते हैं कि वास्तव में रामानुज खुद वहां गए क्योंकि वो जानते थे कि ये मायावादी हैं, और वो मायावादी दर्शन का खंडन करना चाहते थे, यादव प्रकाश के ऊपर कृपा देना चाहते थे। तो खैर भर्ती तो हुए यादव प्रकाश के पाठशाला में, उनके गुरुकुल में, और रोज वहां पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। और रोज यादव प्रकाश शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार वो टीका करा, वो प्रवचन दिया करते थे लोगों को, सुबह अपने विद्यार्थियों को सुबह शाम पढ़ाया करते थे। वैसे मन ही मन में रामानुज जी को कभी ये अच्छा नहीं लगता था जो उनके गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी गुरु बोलते थे वो भक्ति के खिलाफ था, भगवान विष्णु के अस्तित्व के, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ हुआ करता था। लेकिन क्या करें, वो उनके गुरु थे, गुरु से क्या कहते। तो अपने मन ही मन में वो उदास रह जाते लेकिन कुछ कहते नहीं। लेकिन एक बार ऐसे हुआ कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। हुआ ये कि जब दोपहर के समय सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में गए थे भोजन स्वीकार करने के लिए, अकेले रामानुज वहां पर थे, तो यादव प्रकाश ने रामानुज से कहा कि अरे रामानुज आओ, जरा तेल से मुझे मालिश करो। तो अपने गुरु की सेवा करने के लिए तेल लाए और उनका मालिश कर रहे थे। ठीक उसी समय उनका और एक शिष्य वहां पर आया, उनके कोई कई प्रश्न थे। उसी दिन सुबह यादव प्रकाश चांदोग्य उपनिषद के ऊपर प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें एक श्लोक आता है या एक पंक्ति आती है जिसमें यह बताया जाता है, कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी। तो इन शब्दों का अर्थ, सही अर्थ जानना चाहते थे ये शिष्य। तो लेटे लेटे यादव प्रकाश इस श्लोक के ऊपर व्याख्या करने लगे और वो कहने लगे, पुंडरीकम मतलब ये भगवान का नाम है, विष्णु का नाम है, और अक्षिणी मतलब आंखें। तो इस श्लोक में भगवान विष्णु के आंखों का वर्णन है। तो उनके आंखें कैसे हैं? कप्यसाम। तो उन्होंने बताया कपी असाम, कपी मतलब बंदर और आसम मतलब पीछे का हिस्सा। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की आंखें लाल हैं, जैसे एक बंदर के पीछे का हिस्सा होता है। तो जब रामानुज बालक रामानुज ने यह सुना, उनको इतना गुस्सा आया, इतना दुख हुआ उनको कि उनके आंखों से गरम गरम आंसू गिर पड़े। लेकिन वो अपने गुरु को मालिश कर रहे थे, तो आंसू सीधे, गरम गरम आंसू सीधे उनके गुरु के शरीर पे गिर पड़े। तो मुड़ के देखा कि क्या बात है, और देखा कि अरे रामानुज रो रहा है। अरे क्या बात है रामानुज? तो रामानुज ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपने इस तरह से हमारे प्रिय भगवान विष्णु के बारे में ऐसे कहा है, ये जो व्याख्या है बिल्कुल सही नहीं है। तो उस समय यादव प्रकाश को बड़ा गुस्सा आया, अगर तुम असंतुष्ट हो तो मैं तुमसे ज्यादा असंतुष्ट हूं। हमसे जो बुजुर्ग होते हैं उनसे इस तरह से वाद विवाद करना ये बिल्कुल उचित नहीं होता है किसी शिष्य के लिए। तो बेचारे रामानुज क्या करते, नमस्कार किया उन्होंने अपने गुरु को और पूछा कि ठीक है, फिर भी तुम्हारी कोई दूसरी व्याख्या है तो कहो। और फिर दूसरे शिष्य के सामने वो रामानुज को नीचा दिखाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब सुनेंगे दूसरे शंकराचार्य की व्याख्या, मतलब मजाक उड़ा रहे थे। तो उस समय रामानुज ने कहा कि कप्यासम शब्द की व्याख्या अलग तरह से भी हो सकती है, केवल कपि आसम नहीं। अगर कपि शब्द को हमने देख लिया, ये क अपि हो सकता है। कम जलम पिबती, कम जलम पिबती मतलब जो जल को पीता है। कौन जल को पीता है? सूरज। सूरज के समय सूरज की रोशनी से, उष्णता से वो जल खींच लेता है और फिर उससे बादल बन जाते हैं। तो कपि सूरज भी हो सकता है। और आसम मतलब जो जिसे खिल उठता है, खिलना। तो वो क्या वस्तु है जो कि सूरज की रोशनी में खिलता है? वो है कमल, पद्म। तो इस श्लोक में जहां पर चांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि प्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, इसका मतलब है कि भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं, उनके आंखें हैं, वो कमल पुष्प के समान सुंदर हैं और थोड़े लाल लाल भी हैं, ये इसका अर्थ है। तो जब यादव प्रकाश ने यह सुना, बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे इतनी सुंदर व्याख्या मेरा शिष्य कर सकता है, इतना छोटा बालक। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत क्रोधित भी हो गए क्योंकि वो गलत साबित हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे से बीच बीच में छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते थे गुरु और शिष्य के बीच में, और हर बार यादव प्रकाश किसी न किसी तरह से उनके जब भी रामानुज विरोध करते थे तो उस विरोध का मजाक उड़ाकर वो बात को छोड़ देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर से धीरे धीरे से उनको एक प्रकार का भय उत्पन्न होने लगा कि ये लड़का जो है ये तो बिल्कुल मुझे बदनाम करने वाला है आगे चल के, इसकी बुद्धि इतनी तेज है मेरे कोई विद्यार्थी इसका सामना नहीं कर सकते हैं, और आगे चल के देखा जाए तो ये लड़का विष्णु भक्ति का प्रचार ज्यादा करने वाला है और हमारे अद्वैतवाद का जो संप्रदाय है ये तो खतरे में है। तो अभी हमारे अद्वैतवाद के संप्रदाय को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का जो है इतना बुद्धिमान है और उसका यश सब जगह फैल रहा है, सभी लोग मानने लगे हैं धीरे धीरे से कि ये बड़ा विद्वान है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो एक दिन एक गुप्त सभा अपने शिष्यों की उन्होंने बुलाई, जिसमें रामानुज को नहीं बुलाया लेकिन अन्य शिष्य वहां पर आए। अब रामानुज के भाई गोविंद वो भी उसी पाठशाला में उसी गुरुकुल में पढ़ा करते थे लेकिन उसे भी नहीं बुलाया। और जब सारे शिष्य एकत्र हो गए तो यादव प्रकाश कहने लगे कि देखो आप सब मेरे उपदेश से मेरी शिक्षा से बड़े प्रसन्न हो मुझे लगता है। तो सभी ने कहा बिल्कुल गुरु महाराज, हम तो बहुत प्रसन्न हैं आपकी शिक्षा से, आप जैसा भला विद्वान कौन हो सकता है सारे विश्व में। फिर यादव प्रकाश कहने लगे कि देखो ये जो रामानुज है ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ प्रचार कर रहा है और ये तो कहता है कि भगवान एक विष्णु व्यक्ति है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये तो भक्ति मार्ग सब जगह फैलाएगा, फिर हमारे अद्वैतवाद का क्या होगा, शंकराचार्य के संप्रदाय का क्या होगा, हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये प्रचारक इतना शक्तिशाली बनेगा कि बस हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो फिर सारे विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगे। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि अगर आप इसे पाठशाला से निकाल देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर दूसरा विद्यार्थी कहने लगा अरे नहीं नहीं, यही तो हमारे गुरु का डर है कि कहीं वो बाहर चले जाए, अपना पाठशाला खोले और फिर उसके भक्ति मार्ग का प्रचार करे, क्योंकि वो इतना बुद्धिमान है, शास्त्रज्ञ है, तो इतने सारे शिष्य बनाएगा वो, तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, फिर हमसे सुनने कौन आएगा, हमारे गुरु से सुनने के लिए कौन आएगा, तो अद्वैतवाद तो समाप्त ही हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से चर्चा करते करते फिर यादव प्रकाश ने अच्छी तरह से बड़े चतुराई से उनकी भावना ऐसे बना दी थी कि अब उनका प्रस्ताव सामने रखने के लिए समय ठीक आ गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक प्रस्ताव, एक विचार है, हम सब मिलकर उत्तर भारत में जाएंगे, हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे और खास करके गंगा जी में स्नान करने के लिए हम जाएंगे और आप सारे शिष्य मेरे साथ चलो और हम साथ में रामानुज को भी लेकर जाएंगे और किसी ऐसे जगह में है जहां पे और कोई नहीं है, हम रामानुज को मार डालेंगे और फिर जब वापस लौट के आएंगे हम कहेंगे कि रामानुज कहीं जंगल में चला गया, या हम कह सकते हैं गंगा में डूब गया, कुछ भी कहानी बनाकर हम लोगों को बता सकते हैं। और वैसे भी गंगा जल में स्नान करने से ब्रह्महत्या के पाप से भी हम मुक्त हो जाएंगे, तो इसमें कोई डर नहीं है। तो सारे शिष्यों ने हाँ में हाँ मिलाया, हाँ यही करेंगे गुरुदेव, हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर सब शिष्यों ने अपने अपने घर में खबर दी कि हम हमारे गुरु के साथ में उत्तर भारत तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो सब घरों सब लोग प्रसन्न हुए कि ठीक है, अच्छी बात है, आखिर सब लोग ब्राह्मणों के पुत्र थे। और जब रामानुज अपने घर में आए, कांतिमती देवी से उन्होंने बताया, खबर बताया, तो वो भी कांतिमती देवी एक दृष्टि से बहुत खुश हो गई कि ठीक है मेरा पुत्र तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, पुण्यवान हो जाएगा। लेकिन फिर भी मन ही मन में सोच रही थी कि मेरा इकलौता बेटा है, अब वो भी अगर चले जाएगा, अब आप तो जानते हैं कि उस जमाने में रेलगाड़ी एरोप्लेन थोड़ी थे, तो अगर तीर्थ यात्रा में जाना था तो चल के जाते थे, और अगर दक्षिण भारत से, आप जानते हैं कि कांचीपुरम तो बहुत दक्षिण में है, और इतने दक्षिण में से जाकर अगर आपको उत्तर भारत में जाना है तो महीने लग जाते थे। तो सोच लगी कि शायद कितने महीनों, 6-8 महीने, 1-2 साल तक मैं मेरे लड़के को नहीं देखूंगी, तो खैर लेकिन फिर भी गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूं। तो खैर आशीर्वाद दिया कांतिमती देवी ने, अनुमति दे दी। साथ साथ गोविंद जो कि दीप्तिमती के पुत्र थे, रामानुज के भाई, वो भी वहां पर आए। और जब वो आए वहां पर तो दोनों साथ साथ निकल पड़े। उस समय चलते चलते तीर्थ यात्रा में विंध्या पर्वत तक वो पहुंच गए। तब तक कोई ऐसी बात हुई नहीं थी, लेकिन जब वहां पर चले, वहां पर पहुंचे, तो ये सारे शिष्यों को यादव प्रकाश ने कहा मुझे लगता है कि यही अच्छा स्थान है, इसी जंगल में हमें कुछ करना चाहिए रामानुज को। तो ये शिष्य आपस में कुछ सुसुस बात कर रहे थे कुछ, और उधर पास में जंगल में ही गोविंद को दूसरे काम से गया था, तो उसने इन विद्यार्थियों की बातों को सुन लिया, सारी बातें सुन ली। बहुत चिंतित हो गया कि अरे ये मेरे हमारे गुरु और ये शिष्य रामानुज की हत्या करने के लिए सब एक षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो जल्दी से वो रामानुज के पास गया। रामानुज केवल उस समय 18 साल का था, और रामानुज से कहने लगा, देखो देखो हमने ऐसे सुना, ये हमारे यादव प्रकाश हमारे गुरु और उनके शिष्य तुम्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, तुम भाग जाओ यहां से, जल्दी चले जाओ। तो रामानुज को हृदय पर इतना धक्का पहुंच गया, क्योंकि रामानुज बड़े सौम्य स्वभाव के थे, बड़े शुद्ध स्वभाव के थे। उन्होंने ऐसे कभी मन में सोचा भी नहीं था कि उनके गुरु और गुरु भाई इस तरह से उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, अभी उनका कर्तव्य था अपनी जान बचाना। तो सीधे गोविंद को आलिंगन करके वो जंगल में अंदर चले गए। घना जंगल था, वैसे भी रात होने वाली थी, और रामानुज सोचने लगे कि मैं तो एक लड़का हूं और मैं कभी जंगल में रहा नहीं हूं, और ये इतना भयंकर जंगल है, घना जंगल, और अभी रात होने वाली है, और इतने अंधकार में ऐसे घने जंगल में जाऊं, मुझे पता नहीं रास्ता है या नहीं है, जंगली जानवर है नहीं है, ठंडी है, मैं खाने के लिए मुझे क्या मिलेगा, कैसे मैं रहूंगा, जी पाऊंगा भी नहीं, मैं अपने गांव में वापस लौट पाऊंगा या नहीं। फिर भी जान तो बचानी थी, तो सीधे अंदर जंगल में चले गए। लेकिन फिर रामानुज ने सोचा कि क्यों घबराना चाहिए मुझे, भगवान नारायण मेरे साथ में है, वो हमारी रक्षा करने के लिए अवश्य हैं। भगवान भक्त वत्सल होते हैं, कभी भी अपने भक्तों को त्यागते नहीं हैं, अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। और फिर तुरंत उनके हृदय में बहुत हौसला आ गया, साहस बढ़ गया उनका, और फिर बिल्कुल निडर हो गए और अंदर जंगल में चलते गए चलते गए। और फिर जब रात हो चुकी तो किसी एक वृक्ष के नीचे वहां पर लेटे और वहां पर अच्छी नींद सोए, क्योंकि काफी थके हुए थे। सुबह को जागे और फिर आगे चलते गए दक्षिण की ओर। लेकिन उनको ये ठीक से जानकारी नहीं थी कि जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या ऐसे चलते चलते मैं कांचीपुरम पहुंच पाऊंगा या मैं कहीं गलत दिशा में जा रहा हूं। लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था उनका, भगवान के ऊपर भरोसा करते करते वो आगे चल गए, चलते पड़े। और अचानक उन्होंने आगे देखा, सामने एक शिकारी आ रहा है, और शिकारी के साथ उसकी पत्नी भी है, और ये ऐसे शिकारी थे जो केवल पक्षियों को मारा करते थे, तो कई पक्षियों को साथ में भी लेकर आए थे शायद। तो जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो रामानुज ने पूछा उस शिकारी से कि क्या आप बता सकते हैं कि कांचीपुरम नाम का शहर कहां है, इसका रास्ता कहां है, हम कैसे जा सकते हैं। उन्होंने कहा, अरे कांचीपुरम तो बहुत दूर है, इतना दूर है, और तुम यहां अकेले कैसे जाओगे वहां पर, कोई चिंता नहीं करो, हम लोग भी कांचीपुरम जा रहे हैं, आप भी कांचीपुरम जा रहे हैं, क्या बात है, आप कौन है और आप इतने दूर कांचीपुरम आप क्यों जा रहे हैं। रामानुज के मन में विचार आया कि किसी जंगल में हम किसी एक व्यक्ति को मिलते हैं, शिकारी को, हमारे घर से हजारों हजारों मतलब मील दूर, और वो भी कांचीपुरम ही जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं और आप क्यों जा रहे हैं कांचीपुरम। उन्होंने कहा, हम तो विंध्या पर्वत के पास में रहते हैं, यहां के हम शिकारी हैं, और हम तो हमारा काम ही है पक्षियों को शिकार में मारना, और इतने पाप हम करते हैं, पक्षियों को हम जान से मारते हैं, इसलिए हमने सुना है कि कांचीपुरम एक बहुत पवित्र स्थान है, और वहां पर वरदराज जी का सुंदर मंदिर है, और हमारे पापों को धुलाने के लिए, भगवान से क्षमा याचना करने के लिए हम कांचीपुरम जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। तो रात में चलते 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 उनके साथ में गए, और उस व्यक्ति ने कहा, शिकारी ने कहा कि देखो हमें जल्दी चलना होगा, कम से कम रात होने के पहले हमें जंगल के बाहर निकल जाए, तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे। तो रामानुज उन दोनों के साथ में चलते गए चलते गए। आखिर में जब रात हो गई तो एक स्थान में वो रुके, और फिर उस शिकारी ने कहा कि आज रात के लिए हम यहीं पर विश्राम करते हैं। और जैसे रामानुज लेटे वहां पर, तो उन्होंने सुना कि वो स्त्री उस शिकारी से कह रही है, शिकारी की पत्नी शिकारी से कह रही है कि अरे देखो मुझे बहुत प्यास लगी है, देखो तो जरा यहाँ पे कोई पानी के लिए कोई स्थान है या नहीं। तो शिकारी ने उत्तर दिया कि हाँ यहाँ तो लगता है कि कोई कुआं है या कोई नदी है, लेकिन अब तो इतनी रात हो गई है, अंधेरा है, अभी थोड़े अपने प्यास को सहन कर लो, कल सुबह सूर्योदय होते होते अपनी प्यास बुझा देना, हम कुएं के पास चले जाएंगे। तो फिर रात हो गई, रामानुज भी सो गए, और जब सुबह हो गई तो उस शिकारी की पत्नी ने कहा रामानुज से, अरे जरा हमको पानी तो पिलाओ वहां से। तो पास में ही वहां, जैसे कि वो शिकारी ने कहा था, वहां पे कुआं था। तो आप जानते हैं कि पुराने जमाने के कुएं में यहां पे दिखाई पड़ते हैं, अगर आप ये जाम्बोटी साइड में जाएंगे तो कुएं ऐसे हुआ करते थे जहां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी नीचे उतरने के लिए। यहां बेलगाम में जैसे हम कुएं देखते हैं जैसे यहां है, वहां केवल आप बाल्टी फेंक कर आप खींच सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कुएं होते हैं जहां सीढ़ियों से आप नीचे जा सकते हैं। तो सीढ़ियों से जाकर एक बड़े पात्र में, बाल्टी में, वो एक पात्र में वो पानी ले आए उनके पीने के लिए। तो उस महिला ने पी लिया पानी, कहा और प्यास लगी है, दूसरी बार गए पानी लाया, वो भी पी गए, और चाहिए पानी, तीसरी बार ले आए पिया और चाहिए। तो जब चौथी बार पानी लेकर आए तो उस समय देखा कि ना तो वो शिकारी वहां है और ना वो उसकी पत्नी वहां पर है। तो सोचने लगे कहा अभी तो यहां थे, अभी उनको पानी पिलाया, कहां गायब हो गए ये दोनों। तो अचानक सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, तो उस व्यक्ति को उन्होंने पूछा कि अरे भाई साहब आप बता सकते हैं कि कांचीपुरम का रास्ता कहां है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ऐसे तुम विचित्र प्रश्न क्यों करते हो, मैं तो तुम्हें पहचानता हूं, तुम यादव प्रकाश के गुरुकुल में तुम विद्यार्थी हो और तुम तो कांचीपुरम में रहते हो, क्या तुम पहचान नहीं पा रहे, ये देखो राम और कांचीपुरम का ये जो यही है मंदिर का शिखर देखो, यही तो कांचीपुरम है। तो रामानुज सोचने लगा अरे हम तो जहां गए थे विंध्या पर्वत में कितने दिन लगे हमें पहुंचने के लिए, यहां केवल एक रात में हम यहां पहुंच गए। फिर वो व्यक्ति तो चला गया। फिर रामानुज ने सोचा कि अरे ये जो शिकारी थे और उनके पत्नी, ये तो स्वयं नारायण और लक्ष्मी थे। और फिर अपने कपाल पर हाथ थाम दिया, कहा अरे रे रे मैं पहचान नहीं पाया, देखो स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण मेरे सहायता के लिए आए, मुझे बचाया उन्होंने और मैं पहचान नहीं पाया, कितना दुर्भाग्यशाली हूं मैं। और फिर भाव विभोर हो गए और उस कुएं के पास बैठकर वो श्लोक उन्होंने कहा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, भगवान का गुणगान करने लगे। और उसके बाद कुंती महारानी की जो प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में, उन प्रार्थनाओं को दोहराने लगे, सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और बिल्कुल इन प्रार्थना को बोलते बोलते उनका कंठ गदगद हो गया, रोमांच खड़े हो गए, बहुत भक्ति भाव से प्राय बेहोश हो गए और इतने भाव में थे। लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि तीन महिलाएं उस कुएं से पानी भरने के लिए आ रही हैं। तो फिर रामानुज ने अपने आप को रोक लिया और फिर सीधे शहर में प्रवेश करके वो अपने घर में चले गए। जब कांतिमती देवी ने देखा कि अरे रामानुज लौट कर आ गया, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गई, बड़े खुश तो हो गई, सोचा कि इतने जल्दी गंगा जी में स्नान हो गया, इतने जल्दी कैसे आ गया वापस। तो फिर रामानुज ने सारी कहानी बताई तो कांतिमती देवी कोई हताश हो गई कि अरे यादव प्रकाश ने ऐसे किया। और उस समय दीप्तिमती देवी रामानुज की पत्नी को भी लेकर अंदर आई और तीनों को खबर पहुंच गई, तीनों को पता चला कि क्या हुआ था। लेकिन फिर रामानुज ने उनसे कहा कि आप किसी से मत कहिए कि यादव प्रकाश ने क्या किया था। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि अभी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और ठीक उसी समय कांचीपूर्ण जब वो आगे जा रहे थे, वो भी वहां आए, उन्होंने देखा अरे रामानुज आ गया है, बड़े प्रसन्न हुए, रामानुज को आलिंगन किया और वहीं पर बैठे रामानुज ने उनको भी बताया और उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान ने तुम्हें बचा दिया है। और इस तरह से कांचीपूर्ण और रामानुज वहां बैठे, साथ में प्रसाद ग्रहण किया और काफी लंबे समय तक भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहे। फिर उसके बाद कांचीपूर्ण अपने रास्ते में आगे चले गए। उधर यादव प्रकाश ने जब देखा कि रामानुज अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसने अपने शिष्यों को कहा जाके ढूंढो तो सही कहां है रामानुज। शिष्यों ने जाकर आवाज दी जगह जगह पर, लेकिन रामानुज उन पुकारों का कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उन्होंने आके गुरु से कहा कि रामानुज कहां है, हमें पता नहीं। तो यादव प्रकाश और शिष्यों ने सोचा कि शायद वो कहीं जंगल में चला गया होगा, किसी जंगली जानवर ने उसे मार के खा लिया होगा। तो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन गोविंद वहां पर उपस्थित थे। उनको नहीं मालूम था कि गोविंद को सब कुछ मालूम है, और वो उनको ये भी मालूम था कि गोविंद रामानुज के शुभचिंतक है। इसलिए गोविंद के सामने सब नाटक करने लगे कि हाय हाय ये सब क्या हुआ। और फिर यादव प्रकाश ने कहा कि देखो आखिर में क्या है, ये किस्मत जो है इसके बारे में कौन कुछ क्या कह सकता है, आखिर में शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो बात करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर गोविंद को मालूम था कि क्या हुआ है। और फिर आगे चल के वो तीर्थ यात्रा में होकर वापस कई महीनों बाद लौटकर चले आए। जब वो लौटकर आए तो अहोआश्चर्य क्या देखते हैं कि रामानुज वहीं पर है। तो क्या बात है, रामानुज कैसे आ गया, उनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी यादव प्रकाश सीधे कांतिमती देवी के पास आए और नाटक करने लगे, आलिंगन किया रामानुज से। अरे देखो भगवान ने तुम्हें बचाया, वास्तव में तुम्हारे विष्णु भगवान ने तुम्हारी रक्षा की, कितना अच्छा हुआ, हम तो इतने चिंतित थे, हम सोच रहे थे कि कहां गए रामानुज, शायद कोई जंगली जानवर ने मार दिया उसे, कहां गया। चलो बहुत अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, फिर से तुम मेरे पाठशाला में आ जाना। उस समय दीप्तिमती देवी वहां आई, वो पूछ रही थी अच्छा मेरे बेटे गोविंद का क्या हुआ। तो फिर यादव प्रकाश ने बताया कि जब हम गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो उस समय गोविंद भी स्नान कर रहा था, और अचानक उसने एक शिवलिंग देखा गंगा जल में, और फिर उसने शिवलिंग की उपासना करना आरंभ किया, और फिर भगवान शिव जी के प्रति इतनी भक्ति भाव उसकी जागृत हो गई, इतना प्रेम हो गया कि लौटते लौटते जब हम कालहस्ती नाम की जगह में आए थे, उसने निर्णय लिया कि मैं यहीं पर रहकर शिवजी की सेवा करूंगा। काशी विश्वनाथ में वहां शिवजी के प्रति उसकी तीव्र श्रद्धा जागृत हुई थी, इसलिए कालहस्ती नाम के स्थान में उसने कहा कि मैं घर में नहीं लौटूंगा, कांचीपुरम नहीं जाऊंगा, यहीं पर शिवजी की मैं सेवा करते रहूंगा जीवन भर, शिवजी के चरण कमलों में मैं मेरा जीवन अर्पण कर रहा हूं। तो जब दीप्तिमती देवी ने यह सुना तो साधारण माताओं की तरह शोक नहीं किया, बल्कि बड़े खुश हो गई। देखिए ये फर्क होता है संस्कृति का या तो फिर भक्ति का। उन्होंने सोचा कि ठीक है मेरा लड़का अच्छे मार्ग में गया है, कितने सौभाग्य की बात है, कितने लड़के ऐसे होते हैं जो इस मार्ग में जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद दीप्तिमती देवी स्वयं कालहस्ती चली गई, और उन्होंने वहां देखा कि गोविंद वहां पर कितने अच्छी तरह से वहां अपनी साधना में लगा हुआ है। उधर यादव प्रकाश के पाठशाला में रामानुज फिर से चले गए, लेकिन पहले जो झगड़े हुआ करते थे या वाद विवाद हुआ करता था उसको तो न यादव प्रकाश भूले थे, न रामानुज, न अन्य शिष्य, और केवल कपस्याम पुंडरीकम एव अक्षिणी, केवल ये वाद विवाद नहीं, इसके बाद भी कई ऐसे वाद विवाद हुए थे। उनमें से खास करके एक बार ऐसे उत्सव आया था, अवसर आया था, जबकि तैतरीय उपनिषद के ऊपर यादव प्रकाश व्याख्या कर रहे थे, और उसमें ये श्लोक आया था सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और वो कह रहे थे कि ब्रह्म मतलब भगवान मतलब क्या, सत्य ज्ञान और अनंतम, ये भगवान है। तो रामानुज ने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान केवल सत्य है, भगवान केवल अनंत है, ऐसा नहीं। आजकल लोगों की धारणा होती है, कई लोग ऐसे मानते हैं, आप पूछेंगे भगवान कौन है, कहेंगे भगवान शक्ति है, कहेंगे भगवान प्रकाश है, या भगवान कुछ ऐसे विशेष चीज है। लेकिन ये तो सब भगवान के गुण हैं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान की शक्तियां हैं। तो रामानुज ने अपने गुरु को समझाया अद्वैतवाद के खिलाफ सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उस समय उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम चाहिए तो अपना ही पाठशाला क्यों नहीं खोलते, फिर से अपने को संभाल लेते यादव प्रकाश। इस तरह से उनके बीच में गुरु शिष्य के बीच में अंतर बढ़ता गया था और इसके बाद में वास्तव में यादव प्रकाश ने यह षड्यंत्र रचा था। तो इस तरह से जब वापस पाठशाला में आ जाना शुरू किया, फिर भी स्वाभाविक है क्योंकि रामानुज तो वैष्णव थे और यादव प्रकाश मायावादी थे, दोनों के बीच में कैसे सब कुछ ठीक ठाक रहता। लेकिन फिर भी रामानुज समय कटा रहे थे वहां पर। एक दिन ऐसे हुआ कि यमुनाचार्य जो कि श्रीरंगम में रहा करते थे, जिनके बारे में पिछली बार हम विस्तार में वर्णन कर रहे थे, जो कि अब श्री वैष्णवों के आचार्य बने थे, वो श्री वरदराज जी का दर्शन करने कांचीपुरम आए थे। वरदराज मतलब भगवान कृष्ण की मूर्ति है वो, वरदराज। वरदराज का मतलब क्या है? वर, द, वर प्रदान करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ, वरदराज, वरदान देने वालों के राजा। मतलब अगर हमें वरदान मांगना है तो इधर उधर जाने के बजाय भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो कोई भौतिक चीज हमें नहीं मांगनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति है जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं और वो सोचता है कि मुझे कोई भौतिक चीज चाहिए, और ये भौतिक कामनाएं उस व्यक्ति को इतने सता रहे हैं कि वो शुद्ध भक्ति नहीं मांग पा रहा है भगवान से, लेकिन फिर भी भगवान के पास आया है, तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि ठीक है, अगर शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं हो या शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं होते हुए भी शुद्ध भक्ति मांगना भी नहीं चाहते हो भगवान से और केवल भौतिक चीज मांगना चाहते हो, तो किसी देवी देवता के पास जाने के बजाय भगवान कृष्ण के पास जाओ और उन्हीं से मांगो, किसी और से नहीं मांगना। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कामनाएं नहीं है, अकाम, या कोई व्यक्ति सर्व कामनाओं से भरा हुआ है, अकाम सर्व कामोगा, या मोक्ष काम उधार दी, या उसके हृदय में मोक्ष की कामना है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष श्री कृष्ण की उपासना हमें तीव्रता से भक्ति मार्ग का इसको स्वीकार करके करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग प्रकार के वरदान दे सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, कृष्ण भक्तों में भी देखा जाता है, शायद यहां जो कितने भक्त आते हैं जिनकी श्रद्धा भगवान कृष्ण के ऊपर उतनी मजबूत नहीं होती है, जो कच्चे श्रद्धा के रहते हैं, जब उनके जीवन में कोई तकलीफ आ जाती है, कष्ट आ जाता है, तो केवल भगवान के कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कुछ और करना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि गंगा के तट पर रहने वाले व्यक्ति को कुएं खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भगवान श्री कृष्ण के पास आया है उसे किसी देवी देवता के पास, किसी बाबा वैरागी के पास जाने की क्या आवश्यकता है। कोई सोचता है किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया है तो वो जादू टोना का प्रभाव निकालने के लिए हमें उस बाबा के पास जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए। कोई सोचता है ये बीमारी से क्या है, हमारे बीमारी दूर नहीं हो रही है, हम इतना जप कर रहे हैं फिर भी कोई बीमारी ठीक नहीं होती, चलो चलो उस बाबा के पास जाते हैं, वो कुछ हमके मंत्र बोलेगा, कुछ तंत्र करेगा, ये बीमारी से हम दूर हो जाएंगे। मतलब श्रद्धा कच्ची है। जब ये लोग भगवान श्री कृष्ण के शरण को छोड़कर इन दूसरे लोगों के पास, देवी देवताओं के पास जाते हैं, इसका मतलब है कि वो ये सोच रहे हैं कि ये देवी देवता या बाबा लोग या जो भी हैं, इनकी शक्ति भगवान श्री कृष्ण से अधिक है। लेकिन क्या ऐसे है? नहीं। या ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बाबा या जो भी है देवी देवता ऐसे कोई वरदान प्रदान कर सकते हैं जो कि कृष्ण नहीं कर सकते, ये तो अज्ञान है। कृष्ण का नाम है वरदराज, वरदान प्रदान करने वालों में से सर्वश्रेष्ठ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कृष्ण हमारे पूर्ण नहीं कर सकते। तो भौतिक इच्छा भी मांगनी है कृष्ण के पास ही मांगना चाहिए, और वो फिर हमारे भौतिक इच्छाओं से भी वो हमें मुक्त कर देंगे, हमारे हृदय को शुद्ध कर देंगे। लेकिन जो लोग भक्ति भाव से युक्त हैं वो भी कृष्ण के पास जाते हैं, आध्यात्मिक वरदान मांगते हैं, भक्ति का वरदान मांगते हैं जो सर्वश्रेष्ठ वरदान है। तो खैर यमुनाचार्य भी श्री वरदराज जी का दर्शन करने के लिए कांचीपुरम आए थे। आज भी वरदराज जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है दक्षिण भारत में। तो जब वो वहां जा रहे थे अचानक उन्होंने देखा कि यादव प्रकाश ये मायावादी जा रहा है और उसने अपने एक शिष्य के ऊपर अपना कंधा रखा है, उस शिष्य के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा है, और वो शिष्य जो है इतना प्रकाशमान दिख रहा है, उसके चेहरे में इतना तेज और एक प्रकार की शांति और एक प्रकार की शुद्धता, एक ऐसा लग रहा था कि ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, बहुत विशेष लड़का है ये। तो यमुनाचार्य उस समय पूरे 100 साल के थे, काफी वृद्ध हो गए थे और सारे वैष्णवों के प्रमुख आचार्य थे। तो उन्होंने अपने किसी एक शिष्य से पूछा कि ये लड़का कौन है, ये ब्राह्मण कौन है। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव ये लड़का है रामानुज, जिसने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस श्लोक के ऊपर टीका लिखी है, वैष्णव टीका। वास्तव में पहली बार जब रामानुज केवल एक युवक थे, जबकि यादव प्रकाश के साथ उनका वाद विवाद हुआ था इस श्लोक के ऊपर, उन्होंने टीका भी लिखी थी उसके ऊपर, और ये टीका इतनी प्रसिद्ध हो गई थी ब्राह्मण समाज में, विद्वानों के समाज में, कि सभी लोग प्रशंसा करने लगे कि अरे वाह इतनी सुंदर व्याख्या की है, बड़े एक भक्तिपूर्ण भक्ति भाव से। और ये खबर यमुनाचार्य को श्रीनंद में पहुंची थी, उन्होंने भी एक व्याख्या पढ़ ली थी, टीका पढ़ी थी, उनको बहुत पसंद आया था, लेकिन कभी भी रामानुजी से मिले नहीं थे वो। इस बार उन्होंने उनको देखा, जो शिष्य ने बताया कि यही वही रामानुज है, तो यमुनाचार्य को बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ साथ वो उदास भी हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामानुज ये यादव प्रकाश का शिष्य बना है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो रामानुज ये तो वैष्णव है, ये तो परम वैष्णव है, ये तो आगे चल के हमारे वैष्णव संप्रदाय को आगे चला सकता है, बहुत बढ़ा सकता है, बहुत अच्छा प्रचारक बन सकता है, लेकिन ये यादव प्रकाश के शिष्य है, उसके साथ में है, तो क्या करें इसके बारे में। बड़े उदास हुए, फिर भगवान से वो प्रार्थना करने लगे यमुनाचार्य कि हे प्रभु वरदराज, आपकी कृपा से एक गुंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति नाच सकता है, मूर्ख व्यक्ति सुंदर कविता की रचना कर सकता है, और आपके कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए कृपा करके इस रामानुज के ऊपर आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि वो आपकी सेवा में हमेशा रहे, इस मायावाद दर्शन से वो छूट जाए। तो उस समय ऐसी प्रार्थना करके यमुनाचार्य अपने शिष्यों से कहने लगे कि मैं तो चाहता था कि किसी न किसी दिन मेरी मुलाकात इस रामानुज से हो, लेकिन अब मैं इसके पास में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ऐसे मायावादियों का संग नहीं करता। जो लोग मेरे प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, जो मेरे प्रभु के अस्तित्व का खंडन करते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रभु का कोई रूप ही नहीं है, ऐसे लोगों के संग में नहीं करूंगा। इसलिए हालांकि मैं रामानुज से मिलना चाहता हूं, मेरा हृदय तरस रहा है उनको मिलने के लिए, लेकिन चूंकि वो यादव प्रकाश जैसे व्यक्ति के पास में है मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर रंगनाथ जी वरदराज जी अगर कृपा करें तो एक दिन शायद मैं इससे कुछ बात कर पाऊं। और इसके बाद यमुनाचार्य वहां से निकल पड़े, और यमुनाचार्य जब वापस चले गए तो उधर रामानुज अपने गुरु के आश्रम में रहे, अपनी पढ़ाई जारू रखी उन्होंने। 8:15 बजे आपको और सुनना है, सुनना है कि बंद करें? दर्शन का समय हो गया वैसे, थोड़ी बार और एक दो कथा और सुने। तो एक समय ऐसे हुआ कि कांची राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, उसके ऊपर एक भूत सवार हो गया और वो अनपशनप बक रही थी, पागल की तरह उस नाचना कूदना, जैसे भी किसी व्यक्ति के अंदर भूत सवार होता है तो कैसे व्यवहार करता है वैसे ही वो करने लगी। सभी लोग चिंतित हो गए, क्या किया जाए। राजा तो बड़े हैरान हो गए थे, क्या किया जाए, इस वैद्य को बुलाया, उस वैद्य को बुलाया,